करोड़ी कोई सत्संग आज बनाए, करोड़ी कोई सत्संग आज बनाए। नर देई तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले न पाए। तुरिया सुत धन धाम बराई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाए। या से बचो गहो गुरु सरना, सत्संग में तुम बैठो जाए। यह सब खेल रैन का सुपना, मैं तुमको अब दिया जगाए। झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए। सत्संग सच्चा सतगुरु सच्चा, नाम सचाई क्या कहूँ गाए। मान वचन मेरा तू सजनी, जन्म मरण तेरा छूट जाए। नभ चढ़ चलो शब्द में पेलो, राधा स्वामी कहत बुझाए। नभ चढ़ चलो शब्द में पेलो, राधा स्वामी कहत बुझाए।
थोड़े से अल्फाज में, थोड़े से अरसे में अर्ज करूंगा कि संत मत क्या है। संत महात्मा किसी कौम किसी मजहब किसी मुल्क किसी वक्त में क्यों ना आए, हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। दुनिया में कभी कोई महात्मा कौम मजहब मुल्क का झगड़ा पैदा करने के लिए नहीं आता। ना कोई महात्मा किसी के हाथ में डंडे और तलवार को देने के लिए आते हैं। वो सिर्फ हमसे मालिक की भक्ति करवाकर हमको देह के बंधनों से आजाद करके वापस जाके उस मालिक के साथ मनाने के लिए आते हैं। लेकिन हम दुनिया के जीव कैसे मालिक के बदर पर प्यारे के जाने के बाद उनके असली उपदेश को बिल्कुल भूल जाते हैं। उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों के अंदर बंद करके कौम मजहब मुल्क की शक्ल देने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम क्यों करते हैं? कभी अपने पेट की खातिर करते हैं, कभी अपनी इज्जत और मान मर्यादा की खातिर करते हैं। अगर खुले दिल से अनबायस्ड माइंड से किसी भी महात्मा की तालीम की हम खोज करें, यही समझ आएगी कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है। सबसे पहले महात्मा हमको उपदेश करते हैं कि ये जो रचना दुनिया हम अपनी आंख से देख रहे हैं, ये खुद ब खुद पैदा नहीं हुई, اس کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، ایک کرنے والا ہے، چلانے والا ہے اور سب کی سنبھال کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک پرماتما ہے، پرمیشور ہے، جس کے کئی نام ہم نے اپنے پیار میں آ کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس سب دنیا کی رچنا اس پرماتما نے خود پیدا کی ہے، سب کی سنبھال کرتا ہے، سب کا داتا ہے، سب کا وہ بادشاہ ہے۔ ہماری آتما اس پرماتما کی انش ہے، ہم اس ستنام سمندر کے قطرے ہیں، اس مالک سے بچھڑ کر اس مایا کے جال میں الجھے بیٹھے ہیں، اور جو جو کرم ہم من کے متحد ہو کر کرتے ہیں، ان کرموں کا نتیجہ پھل بھگتنے کے لیے ہر ایک بار بار اس 84 کے جیل خانے میں آنا پڑتا ہے۔ اس دنیا کو عام سنت مہاتما نے کرم بھومی کہہ کے یاد کیا ہے، کیونکہ زمین میں جو بھی کوئی بیج ڈالا جاتا ہے اسی فصل کو کاٹنے کے لیے اس بھومی میں، اس کھیت میں ہم کو جانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی مرچ کا بیج ڈالتا ہے تو مرچ کی فصل اکٹھی کرنے چلے جاتا ہے، اگر کوئی آم کا پودا لگاتا ہے وہ آم کے پھل کھانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اچھے کرم کرتے ہیں، اچھا پھل بھگتنے کے لیے آ جائیں گے، برے کرم کرتے ہیں، برا پھل بھگتنے کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن نہ اچھے کرموں کے کارن ہم وے کے بندنوں سے آزاد ہو سکیں گے، نہ برے کرموں کے کارن مرن جمن کے دکھوں سے چھوٹ سکیں گے۔ اگر ہم نیک کرم کرتے ہیں کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ شیخ شاہوکار بن جاتے ہیں، راجے مہاراجے بن جاتے ہیں، قوموں مذہبوں ملکوں کی حکومت لے کر آ جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بیکنٹھ اور سورگ تک چلے جاتے ہیں، وہ بھی بھوگ دینیے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم کو واپس اسی ہی 84 کے جیل خانے میں آنا پڑتا ہے۔ اگر ہم برا کرم کرتے ہیں پھر نرک اور 84 تو انہیں ہم کو تو جانا ہی پڑتا ہے، اور ان کرموں کے کارن جس بھی جاننے میں جا کر کسی کو جنم لینا پڑتا ہے، اسی جاننے میں بیٹھ کر دکھ اور مصیبتیں اس کو سہنی پڑتی ہیں۔ کسی جاننے میں جا کر کوئی سکھ نہیں حاصل کر سکتا، کوئی شانتی نہیں پراپت کر سکتا۔ نچلے جاموں کی حالت تو آپ زیادہ واقفی رکھتے ہیں، آپ انسان کے جاننے کے متعلق اچھی طرح وچار کر کے دیکھیں۔ جس کو رتھیوں منیوں نے نر نرینی بھی کہہ کر یاد کیا ہے، مسلمان فقیروں نے اشرف المخلوق آپ کہہ کے بیان کیا ہے، انگریزی میں جس کو ہم ٹاپ آف دی کریشن کہتے ہیں، اس جاننے کے اندر آ کے کوئی سکھ نہیں حاصل کر سکتا، کوئی شانتی نہیں پراپت کر سکتا۔ کسی سے پوچھ کے دیکھ لو، کوئی بیچارہ بیماری کے ہاتھ سے تنگ آ جاتا ہے، کوئی بے روزگاری کے ہاتھ سے دکھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کے اولاد نہیں ہوتی وہ دکھی ہو جاتا ہے، کسی کو اولاد میں دکھی کیا ہوا ہے، کسی نے قرضہ لینا ہے، کسی نے قرضہ دینا ہے۔ غرضے کے ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ دکھ اور مصیبت کی مصیبت میں الجھا بیٹھا ہے۔ آپ سڑکوں کے اوپر کبھی کنگالوں کی حالت دیکھتے ہیں، جیل خانوں میں جا کر کبھی ملزم کے حالات سن کر دیکھیے، ہسپتالوں میں جا کر بیماروں کی چیزیں سنیے، ہر طرف دنیا میں دکھ ہے۔ کبھی صبح اخبار لے لو، ریڈیو آن کر کے دیکھ لو، اس طرح قوموں قوم مذہب ملک کے جھگڑے دن رات شروع رہتے ہیں۔ کتنے غریب کا خون ہو رہا ہے، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ جس جگہ آپ کا روٹی کپڑے کے لیے انسان بھٹکتا رہتا ہے، اس جگہ آ کر یا جامے میں بیٹھ کر کوئی سکھ کس طرح حاصل کر سکتا ہے، کوئی شانتی کیسے پراپت کر سکتا ہے؟ اس لیے ہر ایک مہاتما ہم کو اپدیش کرتا ہے کہ جب تک تم پرماتما کی بھکتی کر کے پرماتما کے ساتھ ملاپ نہیں کرو گے، تمہارا دل کے دکھوں سے، اس دنیا کے دکھوں سے کبھی کسی حالت میں چھٹکارا نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے ہر ایک کو پرماتما کی کھوج ہے، اسی لیے ہر ایک مہاتما ہمارے اندر مالک کے ملنے کا شوق پیدا کرتا ہے، مالک کے ملنے کا پیار پیدا کرتا ہے۔ और जिस परमात्मा को हम मिलना चाहते हैं वो परमात्मा भी कहीं बाहर नहीं है, वो भी हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह और हमारे वजूद के अंदर है। जिसको भी कभी मिला है अपने शरीर वजूद के अंदर से मिला है, जिसको भी कभी मिलेगा अपने शरीर और वजूद के अंदर से मिलेगा। इसीलिए इस शरीर को क्राइस्ट ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहकर बयान किया है। ऋषि मुनि इसको नर नारायणी देह कहकर याद करते हैं। ये वो देह है जिसको नारायण ने खुद पैदा किया हुआ है, जिसके अंदर नारायण खुद बैठा हुआ है, जिस शरीर में ही बैठकर हमारी आत्मा नारायण का रूप अख्तियार कर सकती है। वो कौन सी जगह है? हमारा शरीर है। और ऐसे ही गुरु नानक ने इसको हरि मंदिर कहकर याद किया है। वो जगह जिसमें हरि खुद रहता है, खुद निवास करता है, वो हमारा शरीर है। इसलिए परमात्मा जिसको भी कभी मिलेगा अपने शरीर के अंदर से मिलेगा, देह और वजूद के अंदर से मिलेगा। अगर कोई सच्चा गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है या गिरजा है, सिनेगॉग है, किसी महात्मा की आप अच्छी तरह तालीम की खोज कर कर देखें, वो यही कहते हैं कि हमारा शरीर है, हमारी देह है, हमारा वजूद है। अब मन में ख्याल है कि अगर परमात्मा हर एक शरीर के अंदर है, हमको नजर क्यों नहीं आता? हम आंख बंद करते हैं, हमको तो अपने अंदर मेरा ही अंधेरा नजर आता है। महात्मा समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के दरमियान एक बड़ी जबरदस्त रुकावट है। वो किस चीज की रुकावट है? वो हौंदे की रुकावट है, इस माया के मोह की रुकावट है, माया के प्यार की रुकावट है, इसकी अटैचमेंट की रुकावट है। जब तक वे हौंदे की बीमारी हमारे अंदर से दूर नहीं होगी, बेशक वो परमात्मा हर एक इंसान के अंदर है, बस हम अपने अंदर से कभी भी उस परमात्मा को पा नहीं सकेंगे। हमें क्या चीज है जो सारा दिन हमारा मन सोचता रहता है कि ये मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरा मुल्क है, मेरी जायदाद है, मेरी औलाद है, जिसको भी हम मेरा मेरा कह रहे हैं, ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम इनको अपना बनाए बैठे हैं, परमात्मा को भूले बैठे हैं, इसलिए हम परमात्मा से अलग हुए बैठे हैं। इतना इन शत्रुओं और पदार्थों के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को सुपने भी हमको इनके ही आते हैं और मौत के वक्त इनकी ही शक्लें सिनेमे के स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आकर फिरना शुरू कर देती है। और जहाँ आशा तहाँ वासा, जिस तरफ हमारा आसन में ख्याल होता है, हम दुनिया में दुनिया के जीव उसी ही रौ में बहना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी चीज हमको दिल के बंधनों की तरफ खींच कर लाती है? दुनिया का मोह और दुनिया का प्यार लाता है। ये किसने पैदा किया? हमारे मन ने पैदा किया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो हमारे मन की रुकावट है। अच्छी तरह सोच करके देखें, ये अपना मन है जिसके मतायक होकर काबे में होकर आज इंसान इंसान का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, मुल्क मुल्क का दुश्मन है। ये जो कुछ भी हमसे करवा रहा है, अपना मन करवा रहा है। जब तक हम मन पर हावी नहीं होंगे, मन पर काबू नहीं डालेंगे, बेशक वो परमात्मा हर एक इंसान के अंदर है, हम अपने अंदर से कभी भी उस परमात्मा को पा नहीं सकेंगे। मन के काबू करने का क्या मतलब है? मैंने अर्ज की थी कि हमारी आत्मा उस परमात्मा के अंश है, लेकिन माया के जाल में आकर इसने मन का साथ ले लिया। मन आगे इंद्रियों के भोगों का आशिक है। जो जो मन कर्म करता है उसका साथ साथ हिसाब आत्मा को भी देना पड़ता है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ेगी, आत्मा को कभी अपने आप की सोझी नहीं आ सकती। जब तक ये अपने आप को पहचानने के काबिल नहीं बनती, ये परमात्मा को पहचानने के काबिल कभी नहीं बन सकती। इसीलिए सोक्रेटिस ने कहा था, नो थाइसेल्फ, सबको पहले तुम अपने आप को पहचानो। जितना अर्सा हम अपने
अपने आप को नहीं पहचानेंगे। हम परमात्मा से पहचानने के कभी भी काबिल नहीं हो सकते। आप देखिए, बादल बादलों में पानी की तरह साफ सुथरा है, लेकिन जिस वक्त वो बरसात बनकर जमीन पर आता है, कितनी गंदगी बन जाता है, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। वो ऐसा ऐसा अपने आप को गंदगी के साथ रहकर गंदगी ही समझना शुरू कर देता है। लेकिन जिस वक्त उसको सूरज की तपश मिलेगी, सूरज की गर्मी मिलेगी, वो बुखार अपन के गर्मी को छोड़ता है। जब गर्मी को जब गंदगी को छोड़ता है, उसको होश आती है कि गंदगी कोई और शय है, और चीज है, मैं कोई और चीज हूँ। फिर वो अपने असल की तरफ देख नजर मारता है, उसको आसमान में बादल नजर आते हैं, वो सीधा बादल में जाकर समा जाता है। ये हर एक इंसान के आत्मा की हालत है, ये उस परमात्मा के अंश है, लेकिन मन के मतायक होकर बिल्कुल अपने आप को खो बैठी है, अपने आप को भूल बैठी है। तो हमने जो भी कोशिश करनी है, ये रू रू और मन की जो गांठ है, इसको खोलने की कोशिश करनी है। अब सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक कई तरीकों से हम मन को काबू करने की कोशिश करते हैं, अपने नफस पर काबू डालने की कोशिश करते हैं। जब तप करते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं, पुण्य दान करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छुप कर बैठ जाते हैं, हम जिस्म के ऊपर हाथ भी लगा लेते हैं, काम भी पढ़वा लेते हैं, जटे भी रख लेते हैं, ग्रंथ पोथियां भी पढ़ते हैं, महात्मों के सत्संग भी सुनते हैं, रोज मंदिरों मस्तों गुरुद्वारों में भी जाते हैं। ये सारे जतन, सब तरीके जो दिन रात हम अख्तियार कर रहे हैं, कि सिर्फ हम मन को काबू करने के लिए अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन हम जबरदस्ती हट कर्मों से मन को दुनिया से डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाकर मन कभी कहीं अटैच नहीं होता, तो दुनिया में रिएक्ट और रिफॉर्म करना शुरू कर देता है। आप देखिए, मन को जबरदस्ती काबू करना ऐसे ही है जैसे एक सांप को आप जबरदस्ती एक बास्केट में पटारी में बंद कर देते हैं। जब तक वो पटारी के अंदर बंद है, आप उसके गुस्से से, जहर से बिल्कुल बचे हुए हैं, लेकिन आपके दिल में खतरा है कि किसी वक्त सांप ये पटारी से निकलेगा और मुझको जरूर जख्म देगा, और इसलिए आप सारा दिन सांप से डरते रहते हैं। बेशक वो सांप पटारी के अंदर बंद ही रहता है। ऐसे ही हम जंगलों पहाड़ों के अंदर छुप कर, ग्रंथ पोथियां वेद शास्त्र पढ़कर, महात्माओं के सत्संग सुनकर सोच लेते हैं हमारा मन बिल्कुल काबू आ गया है, लेकिन जब दुनिया का सामना करना पड़ता है, ये हमारा मन हमको उंगलियों के ऊपर बड़ी बुरी तरह बताना शुरू कर देता है। कई बार नॉर्मल ह्यूमन बींग से हमारी हालत बदतर और बुरी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि हट कर्मों से, जबरदस्ती से आप मन पर थोड़ा बहुत हावी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ डाल सकते हैं, रिलीफ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आप मन को काबू नहीं कर सकते। अगर आप मन को हमेशा के लिए काबू करना चाहते हैं, सबसे पहले इसकी नेचर, इसकी तबीयत के मुताबिक बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। हम देखते हैं कि हमारा मन लज्जत का आशिक है, एक चीज को पकड़ते हैं, अगर उससे कोई अच्छी चीज हमको नजर आ जाए, पहले को छोड़ देते हैं, दूसरी चीज के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी दुनिया की शक्ल, कोई भी दुनिया का प्यार हमारे मन को हमेशा के लिए कभी भी लेकर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए महात्मा कहते हैं, क्योंकि हमारा मन लज्जत का आशिक है, जब तक तुम अपने मन को दुनिया के मोह से, दुनिया के प्यार से, दुनिया की लज्जतों से ऊंची और सूची लज्जत नहीं दोगे, ये दुनिया की लज्जतें कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो ऊंची और सूची किस चीज की लज्जत है? वो शब्द की लज्जत है, नाम की लज्जत है, जो हर खारे के अंदर परमात्मा ने आंखों के पीछे रखी हुई है। ये जितने भी हमारे मजहब है, इनके रस्म और रवाज सबके आपो अपने हैं, क्योंकि हमारे खुद पैदा किए हुए हैं, लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, एसेंस ऑफ ट्रुथ है, बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, वो हर एक मजहब की तय के नीचे एक ही चीज होती है। اور اس روحانیت کو کسی نے کسی مسلمان فقیر نے کلمہ کہہ دیا, بانگ شمالی کہہ دی, کلام الہی کہہ دیا, نظار سترانی کہہ دیا. گرو نانک نے اس کو گر کی بانی, پر کی بانی, سچی بانی کہہ دی, اور سنتوں مہاتموں نے اس کو شبدر نام کہہ دیا, ریشیوں منیوں نے اس کو آکاش کاری رام 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 گر کہہ دیا, کرائسٹ نے اس کو ورڈ یا لوگا یا اسپرٹ یا ہولی گوشت کہہ دیا, چائنیز نے اس کو ٹاؤ کہہ دیا. لفظوں سے بحث مباحثہ کرنے کا تو کوئی ہم کو فائدہ نہیں ملے گا, ہم نے تو اپنے اندر سے اس روحانیت کی کھوج کرنی ہے جس کی لذت حاصل کرنے سے ہمارا من دنیا کا موہ چھوڑ دیتا ہے, دنیا کا پیار چھوڑ دیتا ہے. اس لیے جو ہمارا روحانی سفر ہے وہ پاؤں کے چلے سے سر کی چوٹی تک ہے. اس سفر کی دو منزلیں ہیں, ایک آنکھوں تک ہے, ایک آنکھوں کے اوپر ہے. ہمارے جسم میں جو روح اور من کی جگہ ہے وہ ہر ایک آنکھ کے پیچھے ہے. رشیوں منیوں نے اس کو شیو متر کہا ہے, دیو چکشو کہا ہے, اور گرو نانک اس کو گھر گھر کہتے ہیں, مکتی کا دروازہ کہتے ہیں. کرائسٹ نے اس کو سنگل آئی تھرڈ آئی کہہ کے یاد کیا ہے. مسلمان فقیروں نے نقطۂ سبیدر کہہ کر یاد کیا ہے. ہر ایک کا خیال یہاں آنکھوں کے نیچے سے اترتا ہے. نو دوارے, دو آنکھن, دو کان اور دو ناک کے سوراخ ہیں, منہ ہے, کان کے سوراخ ہے, نیچے دو انگلیوں کے سوراخ ہے. ان نائن اپرچر سے, نو دواروں سے ہمارا خیال ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے. ہم نے اس پھیلے ہوئے خیال کو پھر واپس ریٹریس کر کر آنکھوں کے پیچھے اکٹھا کرنا ہے. اس طرح اکٹھا کرنا ہے, سمرن کے ذریعے اکٹھا کرنا ہے, دھیان کے ذریعے اکٹھا کرنا ہے. یہ جو جگتی ہے, طریقہ ہے, یہ سنت مہاتما سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ کیسے سمرن کرنا ہے, کیسے دھیان کرنا ہے, اور کیسے اپنے پھیلے ہوئے خیال کو پھر واپس ریٹریس کر کر آنکھوں کے پیچھے اکٹھا کرنا ہے. جس وقت خیال ہمارا آنکھوں کے پیچھے اکٹھا ہو جاتا ہے, ہم کو خود بخود اندر سے سوجی اور سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ایک میٹھی سے میٹھی, سریلی سے سریلی آواز جو کہ مالک کی طرف سے آ رہی ہے, ہر کے اندر یہاں گونج رہی ہے, اور اس آواز کو ہم اندر سے سننا شروع کر دیتے ہیں. اسی کو مہاتما نے شبد اور نام کہہ کر یاد کیا ہے. اس کا پرکاش بھی ہے, اس چیز کی آواز بھی ہے. یہ جو ہماری آتما ہے, اس کی دیکھنے کی شکتی کو سنتوں مہاتموں نے نرت کہہ کر یاد کیا ہے, سننے کی شکتی کو سنت مہاتما سرت کہہ کر بیان کرتے ہیں. آنکھوں کے پیچھے آ کر سرت اس شبد کی آواز کو پکڑتی ہے, نرت شبد کے پرکاش کو دیکھتی ہے. اس آواز سے ہم اندر سے اپنے گھر کا روح قائم کر لیتے ہیں, اس پرکاش سے ہم روحانی سفر طے کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال سے, اگر آپ اپنی بستی سے شام کو سیر کرتے کرتے کہیں بہت دور نکل جائیں, رات ہو جائے, اندھیرا ہو جائے, آپ کو پتہ نہ لگ سکے کس طرف آپ کی بستی رہ گئی ہے, آپ واپس گھر آنے کے لیے کیا کریں گے؟ غور سے سنیں گے, کوئی نہ کوئی آواز آپ کی بستی کی طرف سے آ رہی ہو, اور کسی کے ٹیپ ریکارڈر کی آواز ہو, کسی کے ریڈیو کی آواز ہو, اس آواز کو سن کر آپ یکدم اپنے بستی کا رخ قائم کر لیں گے. آپ کی بستی اگلی طرف ہے, پھر پچھلی طرف ہے, پھر دائیں طرف ہے, پھر بائیں طرف ہے. جس وقت بستی کا رخ پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ رستے میں اندھیرا ہے, اونچی نیچی زمین ہے, پانی ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی فلیش ہو, کوئی ٹارچ ہو, اس سے آپ رستہ دیکھتے دیکھتے اپنی بستی میں واپس آ جاؤ گے. کون سی چیز ہم کو واپس اپنی بستی میں لائی؟ وہ آواز لائی, وہ پرکاش لایا, وہ روشنی لائی. ایسے ہی جو ہم اپنے اصلی گھر پرماتما کے گھر سے بھولے ہوئے ہیں, پرماتما نے اپنے تک پہنچنے کے لیے ہر ایک کے اندر آنکھوں کے پیچھے اس آواز کو بھی رکھا ہوا ہے, آنکھوں کے پیچھے اس پرکاش کو بھی رکھا ہوا ہے. تو ہم جب یہاں خیال اکٹھا کریں گے, اپنے اندر سے اس آواز کو سننا شروع کر دیں گے, اس پرکاش کو دیکھنا شروع کر دیں گے, اور آہستہ آہستہ اپنا اندر سے روحانی سفر چلنا شروع ہو جائے گا. इस प्रोसेस को महात्मा ने शब्द या नाम की कमाई कहकर याद किया है, सुर्ख शब्द योग कहकर ध्यान किया है, सुर्ख शब्द अभ्यास कहकर ध्यान किया है कि अपनी सुर्ख को नौ द्वारों से निकालकर आंख के पीछे लगाकर उस शब्द को पकड़ना है, उस नाम को पकड़ना है। इसको इसी को महात्मा सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहते हैं, क्योंकि ये जो अपने लफ्ज है तुम हर एक लफ्ज की हिस्ट्री पेश कर सकते हो, म्यार में कदर कर सकते हो, टाइम में कदर कर सकते हो। हर एक लफ्ज लिखने में आ जाएगा, पढ़ने में आ जाएगा, बोलने में आ जाएगा, लेकिन जिस शब्द और नाम की संत महात्मा उत्सुक करते हैं, महिमा करते हैं, वो ना कभी लिखने में आती है, ना पढ़ने में आती है, ना बोलने में आती है। वो आंखों से देखी नहीं जा सकती, कानों से सुनी नहीं जा सकती, हाथ से पकड़ी नहीं जा सकती, पांव के जरिए पहुंची नहीं जा सकती। इसलिए हजूर महाराज जी उसको अनस्पोकन लैंग्वेज कहकर याद किया करते थे। वो क्रिएटिव पावर है जिसने दुनिया की रचना पैदा की है, जिसके आधार खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, और उसी पावर को हमने अपने अंदर से पकड़ना है। जब तक आत्मा उस क्रिएटिव पावर के साथ अंदर से नहीं अपना रास्ता कायम करेगी, उतना अच्छा ये देह के बंधनों से कभी किसी हालत में आजाद नहीं हो सकेगी। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अगर तुम परमात्मा को मिलना चाहते हो, उस शब्द की अपने अंदर से खोज करो, उस नाम की अपने अंदर से खोज करो। ये जो इंसान का जामा है, ये परमात्मा ने सिर्फ हमको अपनी भक्ति के लिए दिया है, अपने प्यार के लिए दिया है। जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, ये चौरासी का बहुत बड़ा सारा जेल खाना है। इस जेल खाने से उस परमेश्वर ने निकलने का सिर्फ एक दरवाजा रखा है। वो कौन सा दरवाजा है? वो इंसान का जामा है। वो इसीलिए परमात्मा हमको बख्शता है कि इससे फायदा उठाकर हम देह के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो सके। इसलिए इस मौके से फायदा उठाकर हर को उस मंजिले मकसूद को अपने आंखों के आगे रखना चाहिए, उस रूहानी सफर को तय करना चाहिए, ताकि देह में आने का हमारा पर्पस पूरा हो सके, हमारा मकसद पूरा हो सके। इसलिए महात्मा केस को टॉप ऑफ द क्रिएशन कहकर याद करते हैं, और इसी को अशरफुल मखलूक आज कहकर इंसान के जाने को बयान करते हैं। इसको इसीलिए नारायणी देह कहकर हमको समझाते हैं कि सिर्फ इसी जाने को ये फख्र हासिल है कि ये परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा के साल को साल कर सकता है। ये जो हमारे रिश्तेदार है, बहन है, भाई है, पति है, स्त्री है, बाल बच्चे है, इनके साथ हमारा लेने देने का संबंध है, हमारा रंगों का प्यार है। कोई स्त्री बन के दुनिया में आ जाती है, कोई पति बनकर दुनिया में आ जाता है। जितना जितना किसी के साथ कार्मिक रिलेशन है, कार्मिक साथ है, उसके बाद हर एक अपने अपने रस्ते में चले जाता है। जैसे एक सतह के ऊपर आकर हर एक फैक्टर अपना अपना पार्ट अदा करता है। कोई पति का करता है, कोई स्त्री का करता है, कोई विलन का करता है, लेकिन जब वो स्टेज से उतरते हैं, उनका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। ऐसे ही ये दुनिया भी एक बहुत जबरदस्त स्टेज है। हम अपने कर्मों के बावजूद एक दूसरे के रिश्तेदार बने हुए हैं, लेकिन असल में जब देह का साथ छूट जाता है, इनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं रहता, इनके साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं रहता। इसलिए महात्मा कहते हैं कि इनके इतना मोह में ना आप फंसिए, इतना इनसे प्यार ना आप डालिए कि आप जिंदगी के असली पर्पस को भूल जाएं, अपने जिंदगी के असली मकसद को भूल जाएं। दुनिया में रहना है, बहादुर बन के रहना है, कर्मों का हिसाब किताब खत्म करना है, लेकिन खत्म करते हुए जिस पर्पस और मकसद के लिए परमात्मा ने इंसान का जामा दिया है, उस फर्ज को भी पूरा करना है। वो फर्ज क्या है? वो मालिक की भक्ति है, मालिक से विशाल है, मालिक से मलाप है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि दुनिया के दंडों में इतना नहीं बोले जाना कि जो जिंदगी का मेन पर्पज और मकसद है उसको हम भूल कर बैठ जाए। और सत्संग महात्मा इसलिए करते हैं ताकि दुनिया की हमको असलियत का पता लगता रहे, अपने असल का हमको पता लगता रहे, दुनिया से हमारा मोह निकल सके, दुनिया से हमारा प्यार निकल सके, मालिक की भक्ति करने का हमको तरीका पता लग सके, हमको साधन पता लग सके और इस संगत और सोबत का हम फायदा उठाकर हम भी मालिक की भक्ति कर सके, मालिक से प्यार कर सके। इसलिए हर एक संत महात्मा सत्संग के जरिए दुनिया की असलियत बयान करते हैं और अपने असली घर जाने का उपदेश करते हैं, अपना असली जाने का तरीका बताते हैं। सत्संग में कोई कौम और मजहब और मुल्क के झगड़े महात्मा नहीं लेते, सिर्फ मालिक के भक्ति के मतलब हमको विचार देते हैं, भक्ति के मतलब हमको प्रेरणा देते हैं और हमारे अंदर भक्ति का ही प्रेम और प्यार पैदा करते हैं, क्योंकि हमारा मन संगत और सोबत का बहुत जल्दी असर देता है। आप देखिए, अगर आप शराब पीने वालों के पास बैठेंगे आपको शराब पीने की आदत पड़ जाएगी, जुआ खेलने के वालों के पास बैठेंगे आपको जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। ऐसे ही अगर हम संत महात्मा की संगत और सोबत करते हैं, उनको देखकर हमारे अंदर खुद ब खुद मालिक की भक्ति का शौक पैदा हो जाता है, मालिक की भक्ति का प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए महात्मा अपने सत्संग के जरिए, अपने वचन और वाणी के जरिए इस दुनिया की हमको असलियत बताते हैं, ताकि हमारे अंदर मालिक के मिलने का शौक पैदा होता रहे, मालिक के मिलने की तमन्ना पैदा होती रहे। किसी महात्मा की या वाणी की उपदेश की अच्छी तरह खोज करकर, अच्छी तरह रिसर्च करकर देखे। हर एक महात्मा का यही संदेश है, हर एक महात्मा का यही उपदेश है। मैंने अर्ज की थी, महात्मा कोई कौम मजहब मुल्क के झगड़े ना पैदा करने आते हैं, ना कौमों मजहबों मुल्कों की जंजीरों में हमको जकड़ने के लिए आते हैं। वो तो हमको दिल के बंधनों से आजाद करना चाहते हैं, हमको वापस ले जाकर मालिक से मनाना चाहते हैं। तो हमको संतों महात्माओं की तालीम को असली मायनों में समझने की कोशिश करनी चाहिए, असली उनकी तालीम की खोज करनी चाहिए, उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे के अख्तलाफ कभी पैदा नहीं करने चाहिए। सिर्फ उनकी अकली और तालीम से पूरा पूरा फायदा उठाकर हमने अपने अंदर से शब्द की लज्जत हासिल करनी है, नाम की लज्जत हासिल करनी है। आप किसी महात्मा की तालीम की खोज करके देखो, क्राइस्ट की पढ़कर देख लो, न्यू टेस्टामेंट यही तालीम रहेगा। मोजेस को आप अच्छी तरह विचार करके देख लो, यही तालीम देगा। गुरु नानक का देख लो आप, और कोई संत महात्मा दादू है, पलटू है, जगजीवन राम जी है, महात्मा चरणदास जी है, मीराबाई है, किसी कबीर साहब है, किसी महात्मा की आप तालीम लो। हर एक महात्मा का यही संदेश है, हर एक महात्मा का यही उपदेश है।